अमेरिका ने कहा है कि उत्तरी कोरिया के मिसाइल हमले की धमकी से जूझने के लिए वो सैनिक कार्यवाही करने के लिए तैयार है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ की एक तत्काल अविलंब मीटिंग बुलाने को कहा। इसके अलावा अमेरिका ने उन देशों को भी आगाह किया जो उत्तरी कोरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते हैं। ये एक तरह से चीन के प्रति आड़ में की गई आलोचना है। तो इसी पर रशीदा यूसुफ जाय की ये रिपोर्ट सुनिए। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत निकी हेली ने जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ की बैठक की बात की तब वो सिर्फ शब्दों की ही बात नहीं थी। न्यूयॉर्क में अविलंब मीटिंग बुलाई गई और विषय था उत्तरी कोरिया द्वारा एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किए जाना। नेता किम जोंग उन ने इस लॉन्च को बड़े ही भड़काऊ तरह से अमेरिका के लिए एक उपहार कहा और ये दिन था जब अमेरिका मना रहा था अपना स्वतंत्रता दिवस। सुश्री हेली ने कहा कि सिर्फ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत उसके मित्र देश ही खतरे में नहीं हैं, बल्कि सभी देशों पर उत्तरी कोरिया से खतरा मंडरा रहा है और कहा कि उत्तरी कोरिया एक शांतिपूर्ण दुनिया की रचना नहीं चाहता।
I must say that today is a dark day. It is a dark day because yesterday's actions by North Korea made the world a more dangerous place. Their illegal missile launch was not only dangerous, but reckless and irresponsible. It showed that North Korea does not want to be part of a peaceful world.
इसके साथ ही सुश्री हेली ने उत्तरी कोरिया को उसके इस कदम के कारण संभावित प्रतिकार की चेतावनी भी दी।
The United States is prepared to use the full range of our capabilities to defend ourselves and our allies. One of our capabilities lies with our considerable military forces. We will use them if we must.
अमेरिका के प्रतिनिधि ने बताया कि इससे पहले सुश्री हेली ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की थी और उत्तरी कोरिया के साथ व्यापार जारी रखने वाले देशों के लिए व्यापार प्रतिबंध लगाने पर चर्चा की। अब ये चीन के प्रति एक इशारा था जो उत्तरी कोरिया का इकलौता एक बड़ा मित्र देश है और सबसे बड़ा व्यापार साथी भी।
There are countries that are allowing, even encouraging trade with North Korea in violation of UN Security Council resolutions. Such countries would also like to continue their trade arrangements with the United States. That's not going to happen.
निकी हेली ने एक नए सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन को झंडी दिखाई जो कि निकी हेली के अनुसार उत्तरी कोरिया की धमकी के बदले एक उचित जवाब होगा। अब इसमें उत्तरी कोरिया की मिलिट्री और उसके शस्त्र कार्यक्रम को मिलने वाले तेल पर प्रतिबंध लगाना शामिल होगा। इसके कुछ घंटे पहले श्री ट्रंप ने चीन और उत्तरी कोरिया के साथ उसके व्यापार संबंधों पर अपनी कुंठा जाहिर की और ट्विटर पर लिखा, सो मच फॉर चाइना वर्किंग विद अस। लेकिन रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने इस आक्रामक प्रतिक्रिया के विरोध में चेतावनी दी।
Для России и Китая совершенно ясно, что
It's perfectly clear to Russia and China that any attempts to justify the use of force by referring to Security Council resolutions are unacceptable and will lead to unpredictable consequences in this region which borders both the Russian Federation and the People's Republic of China.
ऑस्ट्रेलिया के कार्यकारी प्रधानमंत्री बार्नबी जॉयस ने कहा कि सरकार अमेरिका द्वारा चीन के विरुद्ध ली गई किसी व्यापारिक कार्यवाही के प्रति अपनी सहमति देती है।
If people want to aid and abet that threat of the North Korean leadership, then well obviously we can't be supporting them.
एबीसी के साथ बात करते हुए श्री जॉयस ने ऑस्ट्रेलिया पर इस तरह के कदम से पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव को कोई गंभीर नहीं बताया। उन्होंने कहा कि बल्कि एक बड़ा आर्थिक खतरा सामने आ सकता है यदि उत्तरी कोरिया को रोका नहीं गया, क्योंकि उत्तरी कोरिया द्वारा एक ऐसी गलती यानी दक्षिण कोरिया या जापान की तरफ एक मिसाइल छोड़ने से पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति पर इसका असर पड़ेगा और खास तौर से सीधा और अत्यधिक असर चीन की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा.
The trade sanctions, the effect of trade sanctions would pale into insignificance against what would happen if North Korea continues down this path. Because if North Korea was to actually make a mistake in one of their launches, that's all they have to do. They don't have to deliver a weapon. They just have to make a mistake and drop one of their missiles, you know, I imagine, into South Korea or onto Japan, then the economic plan for China, the economic plan for Southeast Asia would cease at that moment.
Okay.
It'd be devastating for the global economics and absolutely devastating for Chinese economics.